भाग चार, सरकार के अंग, न्यायपालिका। सरकार के जितने भी मुख्य कार्य हैं उनमें निसंदेह न्याय कार्य अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सीधा संबंध नागरिकों से होता है। चाहे कानून के निर्माण की मशीनरी कितनी भी विस्तृत और वैज्ञानिक हो, चाहे कार्यपालिका का संगठन कितना भी पूर्ण हो, परंतु फिर भी नागरिक का जीवन दुखी हो सकता है और उसकी संपत्ति को खतरा उत्पन्न हो सकता है यदि न्याय करने में देरी हो जाए या न्याय में दोष रह जाए अथवा कानून की व्याख्या पक्षपात पूर्ण या भ्रामक हो। मैरियट। न्यायपालिका का महत्व। व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है और इसके साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति के अपने कुछ स्वार्थ भी होते हैं। व्यक्ति के विचारों और उसके स्वार्थों में इस प्रकार का भेद होने के कारण उसमें परस्पर संघर्ष नितांत स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में व्यक्तियों द्वारा व्यक्तियों पर शासन किया जाता है और इस बात की आशंका रहती है कि शासक वर्ग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है। ऐसी स्थिति में सदैव ही एक जैसी सत्ता की आवश्यकता रहती है जो व्यक्तियों के पारस्परिक विवादों का हल कर सके और शासक वर्ग को अपनी सीमाओं में रहने के लिए बाध्य कर सके। इन कार्यों को रोकने वाली सत्ता का नाम ही न्यायपालिका है। राज्य के आदिकाल से लेकर आज तक किसी न किसी रूप में न्याय विभाग का अस्तित्व सदैव ही रहा है और सामान्य जनता के दृष्टिकोण से न्याय कार्य का संपादन सदैव ही महत्व रखता है। राज्य में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की व्यवस्था चाहे कितने ही पूर्ण और श्रेष्ठ क्यों ना हो, परंतु यदि न्याय करने में पक्षपात किया जाता है, अनावश्यक व्यय और विलंब होता है या न्याय विभाग में अन्य किसी प्रकार का दोष है तो जीवन नितांत दुखपूर्ण हो जाएगा। डॉक्टर गॉर्नर ने ठीक ही लिखा है कि न्याय विभाग के अभाव में एक सभ्य राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। कोई भी समाज बिना विधानमंडल के रहता है, यह बात समझ में आ सकती है, लेकिन किसी भी समय ऐसे राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती जिसमें न्यायपालिका की कोई व्यवस्था ना हो। न्याय विभाग की कुशलता के संबंध में ब्राइस ने भी अपनी श्रेष्ठ शब्दावली में कहा है कि न्याय विभाग की कुशलता से बढ़कर सरकार की उत्तमता की और दूसरी कोई भी कसौटी नहीं है, क्योंकि किसी और चीज से नागरिक की सुरक्षा और हितों पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि उसके इस ज्ञान से कि वह एक निश्चित शीघ्र व अपक्षपाती न्याय शासन पर निर्भर रह सकता है। कानून को कुटिलतापूर्वक लागू किए जाने से यह समझना चाहिए कि नमक ने अपना स्वाद खो दिया है। व्यवस्था की आशा उस समय समाप्त हो जाती है जब उसे दुर्बलता या उत्तेजनापूर्वक लागू किया जाए। यदि न्याय का दीपक अंधकार से आवृत हो जाए तो उससे उत्पन्न अंधकार का अनुमान लगाया जाना कठिन है। अन्य शासन व्यवस्थाओं की तुलना में प्रजातंत्र में न्यायपालिका का महत्व अधिक है। प्रजातंत्र अपने स्वभाव से ही मर्यादित शक्तियों वाला शासन होता है और शासन को इस प्रकार की मर्यादा में रखने का कार्य न्यायपालिका के द्वारा ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रजातंत्र को जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन कहा जाता है, लेकिन जब तक निष्पक्ष, शीघ्र और सर्जन सुलभ न्याय की व्यवस्था नहीं होती, जनता का शासन एक मिथ्या धारणा बनकर ही रह जाता है। वर्तमान समय की प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं में सामान्यतः संविधान के द्वारा ही नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं और शासन से अपेक्षा की जाती है कि वह नागरिकों के इन अधिकारों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन व्यवहार में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका का अस्तित्व आवश्यक है। उसके अभाव में नागरिक के अधिकार निरर्थक हो जाते हैं। संघात्मक शासन में विशेष महत्व इन सब के अतिरिक्त प्रजातंत्र के एक रूप संघात्मक शासन में तो न्यायपालिका का महत्व बहुत ही बढ़ जाता है, क्योंकि इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत न्यायपालिका अभियोगों के निर्णय के साथ साथ संविधान की व्याख्या और रक्षा का कार्य भी करती है। न्यायपालिका केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों को उनकी निश्चित सीमाओं में रहने का कार्य करती है, और यदि इनमें से कोई भी एक पक्ष संविधान द्वारा निश्चित सीमाओं के उल्लंघन का प्रयत्न करे तो न्यायपालिका उनके कार्यों को अवैध घोषित कर सकती है। न्यायपालिका के इस शक्ति को न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति के नाम से पुकारा जाता है। अमेरिका में तो अपनी इस शक्ति के आधार पर न्यायपालिका ने बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है, और अमेरिकी न्यायाधीश हूस तो यहाँ तक कहते हैं कि अमेरिकी संविधान वैसा ही है जैसा कि न्यायाधीश कहते हैं। यद्यपि भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत न्यायपालिका को अमेरिकी व्यवस्था जितना अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं, लेकिन फिर भी यह तो स्वीकार करना ही होगा कि सभी शासन व्यवस्थाओं में, विशेषतः संघात्मक शासन व्यवस्था में, न्यायपालिका की स्थिति बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। न्याय विभाग के कार्य। न्यायपालिका व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों के आधार पर न्याय प्रदान करने का कार्य करती है। न्यायपालिका ही नागरिक अधिकारों की रक्षा, स्वतंत्रता की वृद्धि, अपराधों पर नियंत्रण व समाज में सुरक्षा की भावना बनाए रखती है। न्यायपालिका के द्वारा प्रमुख रूप से निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। पहला, अभियोगों का निर्माण। व्यक्तियों में विचार भेद, स्वार्थों की भिन्नता, फौजदारी और माल संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। न्याय विभाग का सर्वप्रथम कार्य विद्यमान कानूनों के आधार पर इन विवादों का निर्णय करना होता है। प्राचीन काल में ही सभी देशों में न्याय विभाग के द्वारा इस प्रकार का कार्य किया जाता रहा है। दूसरा, कानूनों की व्यवस्था। कानूनों की भाषा सदैव ही स्पष्ट नहीं होती, और अनेक बार कानूनों के भाषा के संबंध में अनेक प्रकार के विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार की प्रत्येक परिस्थिति में कानूनों की अधिकारपूर्ण व्याख्या करने का कार्य न्यायपालिका के द्वारा ही किया जाता है। न्यायालयों द्वारा की गई इस प्रकार की व्याख्याओं की स्थिति कानून के ही समान है। इस प्रकार न्यायपालिका कानून विषयक संदेहपूर्ण परिस्थितियों की निश्चित व्याख्या देकर तथा उनका स्पष्टीकरण प्रस्तुत करके कानून का क्षेत्र व्यापक बना सकती है। तीसरा, औचित्य के आधार पर कानून। कानूनों का स्वरूप कितना ही विस्तृत क्यों ना हो, न्यायालय में अनेक ऐसे विवाद उपस्थित होते हैं जिसका निर्णय वर्तमान कानून द्वारा नहीं किया जा सकता। न्यायालयों के द्वारा इस प्रकार के विवादों का निपटारा विवेक, औचित्य व स्वाभाविक तथ्य के सिद्धांत का आश्रय लेकर किया जाता है। भारत के प्राचीन विधि शास्त्रियों ने इसी को धर्म व सत्य के नाम से पुकारा है। न्यायाधीश औचित्य धर्म व सत्य के आधार पर जो निर्णय करते हैं वह एक परंपरा को उत्पन्न कर देता है, और यदि अन्य न्यायाधीश भी समान परिस्थितियों में इसी प्रकार के निर्णय करें तो परंपरा के आधार पर एक नवीन कानून का निर्माण हो जाता है, जिसे केस लॉ या न्यायालयों द्वारा निर्मित कानून कहते हैं। न्यायालय के इन निर्णयों के संबंध में लीकॉक ने लिखा है, इस प्रकार न्यायाधीशों द्वारा दिया गया निर्णय अप्रत्यक्ष रूप से कानून का पूरक होता है। इस दृष्टि से न्यायालय अर्ध विधानमंडल का रूप धारण करके कई वर्तमान कानूनों का निर्माण करता है। चौथा, व्यक्ति स्वतंत्र व अधिकारों की रक्षा। व्यक्ति की स्वतंत्रता दो तरफ से बाधा उत्पन्न हो सकती है, अन्य व्यक्तियों द्वारा या राज्य द्वारा। न्याय विभाग बाधाओं को दूर कर व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करता है। यदि शक्तिशाली व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट करने का प्रयास करता है तो पीड़ित पक्ष न्यायालय की शरण लेकर शक्तिशाली व्यक्ति को ऐसा कार्य करने से रोक सकता है और उसके द्वारा किए गए अनुचित कार्यों के लिए दंड दिलवा सकता है। वर्तमान समय की प्रवृत्ति यह है कि व्यक्ति और राज्य के संबंध को संविधान द्वारा मर्यादित कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या किन्हीं पदाधिकारियों द्वारा संवैधानिक या कानूनी मर्यादा भंग करने पर व्यक्ति न्यायालय की शरण लेकर उसको ऐसा कार्य करने से रोक सकता है। इस प्रकार न्याय विभाग व्यक्तियों को स्वतंत्रता और अधिकारियों की रक्षा का कार्य करता है। पांचवा, घोषात्मक निर्णय प्रदान। पांचवा, घोषणात्मक निर्णय प्रदान करना। कभी कभी जाने या अनजाने में व्यवस्थापिका ऐसे कानूनों का निर्माण कर देती है जो अस्पष्ट या पूर्व निर्धारित कानूनों के विरुद्ध होते हैं। न्यायालयों को ऐसे कानूनों के संबंध में घोषणात्मक निर्णय देने का अधिकार होता है। अनेक राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था है कि बिना किसी प्रकार के विशेष मुकदमे के ही व्यक्ति कानूनों का स्पष्टीकरण या उनके औचित्य या अनौचित्य के संबंध में निर्णय की मांग कर सकता है। न्यायालयों द्वारा दिए गए इन सभी प्रकार के निर्णय भी घोषणात्मक नियमों के अंतर्गत आते हैं। छठा, संविधान के रक्षण का कार्य। न्याय विभाग संविधान की पवित्रता और उसमें प्रतिपादित व्यवस्था की रक्षा का कार्य करता है। वर्तमान समय में अधिकांश राज्यों के संविधान कठोर हैं। उनमें साधारण कानून और संवैधानिक कानून में अंतर किया जाता है और संविधान द्वारा व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की शक्तियों को सीमित कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में यदि व्यवस्थापिका या कार्यपालिका संविधान के प्रतिकूल कोई कार्य करती है तो न्यायपालिका इस प्रकार के कानूनों या कार्यों को असंवैधानिक घोषित करते हुए संविधान की रक्षा का कार्य करती है। संघात्मक राज्य में तो संविधान द्वारा ही केंद्र सरकार और इकाइयों की सरकार के बीच शक्ति विभाजन भी किया जाता है और न्यायपालिका इस बात का ध्यान रखती है कि केंद्र सरकार या सरकारें संविधान द्वारा किए गए इस शक्ति विभाजन के विरुद्ध कोई कार्य न करे। सातवां, परामर्श संबंधी कार्य। अनेक राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था है कि न्यायपालिका निर्णय देने के साथ साथ कानूनी प्रश्नों पर परामर्श देने का कार्य भी कर सकती है। यदि व्यवस्थापिका या कार्यपालिका द्वारा इस प्रकार का परामर्श मांगा जाए, उदाहरणतः इंग्लैंड में प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति से सरकार प्राय वैधानिक और कानूनी प्रश्नों पर परामर्श लेती है। कनाडा में सर्वोच्च न्यायालय का एक कार्य यह है कि वह गवर्नर जनरल को कानूनी परामर्श दे। ऑस्ट्रिया, रामा, बल्गारिया, स्वीडन, भारत आदि देशों में भी इस प्रकार की व्यवस्था है। आठवां, विविध कार्य। उपयुक्त के अतिरिक्त न्यायालय अन्य विविध कार्यों का भी संपादन करते हैं। सोवियत रूस जैसे समाजवादी राज्यों के न्यायाधिकारी वर्ग द्वारा क्रांति के रक्षक का महान कार्य किया जाता है। न्यायालयों को प्रतिबंधात्मक आदेश देने का अधिकार होता है। वे किसी व्यक्ति अथवा संस्था को यह कह सकते हैं कि जब तक उसके द्वारा अभियोग की पूरी जांच न हो अथवा निर्णय न हो तब तक वे इस संबंध में कोई कार्य न करें। इस आदेश के उल्लंघन को न्यायालय द्वारा अपमान समझा जाता है। वे कुछ विभागीय अथवा प्रशासनिक कार्य करते हैं, जैसे अपने लिपिकों की नियुक्ति अथवा निचली अदालतों का निरीक्षण। न्यायालय के और कई कृत्य हैं, जैसे अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना, विदेशियों को नागरिकता प्राप्त करना, नागरिक विवाह की स्वीकृति देना, अल्पसंख्यकों के संरक्षक तथा संपत्ति के प्रबंधककर्ता नियुक्त करना आदि। वे किसी भी वसीयतनामे को प्रमाणित करने का आज्ञा पत्र जारी करते हैं। वर्तमान समय में न्यायालयों द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य निर्वाचन संबंधी मामलों के निर्णय किया जाता है। इस प्रकार के विवादों का निपटारा सामान्यतः उच्च स्तर के न्यायालयों द्वारा ही किया जाता है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वर्तमान समय में न्याय विभाग अनेक महान कार्यों का संपादन करता है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे राज्यों में जहां पर न्यायिक पूर्वालोकन की व्यवस्था है, न्यायपालिका के कार्य और शक्तियां निसंदेह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। न्यायपालिका की स्वाधीनता व इस स्वाधीनता प्राप्ति के साधन। न्यायपालिका का कार्य क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है और उसके द्वारा विविध प्रकार के कार्य किए जाते हैं, लेकिन न्यायपालिका के इस प्रकार के विविध कार्यों को उसी समय कुशलतापूर्वक संपन्न कर सकती है जबकि कार्यपालिका स्वतंत्र हो। कार्यपालिका की स्वतंत्रता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अमेरिकन राष्ट्रपति टॉफ्ट ने कहा है कि सभी मामलों में, चाहे वे व्यक्ति तथा राज्य के बीच में हो, चाहे अल्पमत और बहुमत के बीच हो, चाहे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक दृष्टि से शक्तिशाली और निर्बल के बीच में हो, न्यायपालिका को निष्पक्ष रहना चाहिए और बिना किसी भय या पक्षपात के निर्णय देना चाहिए। डॉक्टर गार्नर ने भी इस संबंध में लिखा है, यदि न्यायाधीशों में प्रतिभा, सत्यता और निर्णय देने की स्वतंत्रता ना हो तो न्यायपालिका का सारा ढांचा खोखला प्रतीत होगा और उस ऊंचे उद्देश्य की सिद्धि नहीं होगी जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता से हमारा तात्पर्य यह है कि न्यायाधीशों की कानून की व्याख्या करने और न्याय प्रदान करने के संबंध में स्वतंत्र रूप से अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए और उन्हें अपने कर्तव्य पालन में किसी भी अनुचित तौर पर प्रभावित नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित उपायों को अपनाया जा सकता है।